संकल्प हर मेरा सब कुछ समर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको
शांति। जो भी संगम पर हुआ उसका सारा यादगार कहां बन गया भक्ति मार्ग में। अगर देखा जाए तो शायद किसी के भी चरित्र का इतना गायन नहीं होता है जितना हम ब्राह्मणों ने जो संगम पर कर्तव्य किए, चाहे कोई मिनिस्टर हो या कोई कैसा भी भक्त हो। लेकिन जो गायन संगम पर हम आत्माओं ने किया कर्तव्य, उसका गायन वैसा कहीं और नहीं होता। और विशेष रूप से अगर श्रीमद् भागवत में देखें तो भी भगवान की महिमा से भी ज्यादा जो भगवान के भक्त हैं उनका बहुत गायन होता है, जिसमें विशेष रूप से कह सुदामा है, केवट है, मीरा है, या कई ऐसे शबरी है। और इनके चरित्र में एक चीज कॉमन दिखाई जाती है, वो है इनका प्रेम भाव परमात्मा के प्रति। क्योंकि प्रेम तो देखा जाए सभी भक्त करते हैं, सभी का रहता है, लेकिन उनका प्रेम एक अलग प्रकार का है। एक ऐसा प्रेम है जो कि कोई कंडीशन पे नहीं है, कुछ लेने के लिए नहीं है, निश्चल है, सच्चाई है, सफाई है उस प्रेम में। अब अगर उसको हम संगम युग पर भी देखें तो संगम युग पर भी जो भी, ऐसे तो सभी बाबा को प्यार करते हैं और बाबा कहता है सभी पास हैं प्रेम के सब्जेक्ट में, बाप कोई बाप से सभी का प्रेम है, लेकिन फिर भी कोई कोई आत्मा प्रेम के सब्जेक्ट में विशेष रहती है। तो सुदामा के तीन मुट्ठी चावल, हम समझते सभी ने भागवत में इस चरित्र को सुना होगा। कहते हैं कि सुदामा ने जो है इतनी दरिद्रता क्यों आई, क्योंकि उसने कृष्ण के हिस्से के क्या खा लिए थे, चने खा लिए थे, और जो कि उसकी जो माता थी उसने श्राप दे दिया था कि तुम भी एक एक दाने के मोहताज हो जाओगे। तो ऐसा कहते कभी भी किसी के हिस्से का कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और यहां पे भी कई बार बाबा ऐसे भी कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर, चलो खाया नहीं लेकिन फिर भी दृष्टि अगर चली गई, संकल्प उठ गया। हम एक कल रात में मुरली पढ़ रहे थे, वो काफी पुरानी कराची के टाइम की थी, उसमें एक जगह बाबा कह रहे थे कि तुम बच्चों ने बहुत पवित्र और सच्चाई से अपना धन इस यज्ञ में यज्ञ माता को समर्पित किया है, इस धन को तुम बच्चे स्वीकार करते हो जिससे तुम्हारी बुद्धि जो है वो कैसी बनती है, शुद्ध बनती है, पवित्र बनती है। अगर इस अन्न को कोई तमोगुणी आत्मा, विकारी आत्मा, लोभ या कुछ ऐसा शब्द था, मतलब लालच की वृत्ति से स्वीकार करती है तो महापाप की भागी बनती है। तो अभी ये भी एक प्रश्न उठता है कि हम कोई चीज यज्ञ में देखते हैं या खाते हैं तो हमारी वृत्ति उस समय कैसी होती है, लोभ की होती है, लालच की होती है। तो हमें एक विचार ये भी आया कि जब भगवान अन्न के लिए इतना कह रहा है तो अगर हम यज्ञ के जो बच्चे हैं बाबा के, अगर उनके प्रति वृत्ति हमारी निगेटिव है, नकारात्मक है, तो क्या उसका कितना ज्यादा महापाप बनेगा। तो माना ये चीज है कि हमारी वृत्ति, हमारे भाव कैसे हैं। तो इस यज्ञ में अगर शुरू में भी देखा जाए तो जिनका जिनका धन लगा वो कितना प्योर था, कितना पवित्र था, और उन्होंने तो कोई सोचा भी नहीं कैसे आके तुरंत धक से दे दिया। तो बात ये आ रही थी कि सुदामा के जो ये कंडीशन हुई, इसलिए कहते किसी के हिस्से का नहीं खाना। लेकिन कई कई जगहों पर भागवत में और कुछ कथा वालों ने इसका एक अर्थ ये भी निकाला कि एक ऐसी भिक्षुण थी, ब्राह्मण थी एक माता, अकेले रहती थी, वो करीब 5 दिन से भूखी थी और कहीं भी उसे कुछ नहीं मिल रहा था, तो कहीं से उसे चने मिले और वो चने उसने सोचा कि सुबह जो है ठाकुर जी को भोग लगा के खाएंगे। और वो चने चोर चुरा ले जाते हैं और फिर चोर जब भाग रहे होते हैं तो उनके चने वो शांदीपानी के आश्रम में जहां ये लोग रहते थे कृष्ण और सुदामा, वहां गिरते हैं। तो गुरु माता सोचती है कोई शायद दे गया है और वो ये चने देख के कहती ये तुम लोग आपस में बांट के खा लेना। फिर उसके बाद कहते हैं कि सुदामा तो ब्राह्मण था, उसके अंदर दिव्य शक्ति भी थी, जान लेता था हर बात को। जब वो चने देखता है, क्योंकि उस जो माता थी जिसके वो चने थे वो श्राप दे देती है उनके लिए कि इस चने को जो भी खाएगा वो मेरी तरह दाने का मोहताज हो जाएगा, वो भी दरिद्र हो जाएगा। तो जब सुदामा को ये आता है तो उसे लगता है कि अगर कृष्ण को ये खिला दिया तो उसके आधार से तो पूरा विश्व चल रहा है। तो वो मतलब अपने मित्र को बचाने के लिए वो सारे के सारे चने स्वयं खा जाता है और कहीं सब इस रीति से देखते कि उसे भूख लगती है और वो उसे देता नहीं है इसलिए खाता है। तो हमको कई सारी बातें विचार में आ रही थी आज सुबह की यज्ञ में शुरुआत से और आज तक, कहीं भी अगर चले जाएं, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये जो देने का भाव है ये हर जगह है। और देखा यह जाता है कि जब हम दे रहे होते हैं तो हमारे विचार कैसे होते हैं, क्योंकि महत्व इस बात का नहीं है कि हमने कितना दिया है, क्वांटिटी उसकी कितनी है, हमने सेंटर कितने खोल के दिए हैं या हमने कितने घंटे की सेवा करी है। डिपेंड ये करता है कि हमारे देते वक्त भाव किस आधार पे थे, किस वृत्ति से हमने दिया है। चलो अगर इसे हम यज्ञ की रीति से या बाबा की रीति से ना ले, अपने लिए भी ले। अगर हम कहीं जाते हैं हमें किस रीति से कोई सम्मान देता है या हमारे लिए कोई कुछ देता है तो भी हम पहले उसकी भावना देखते हैं। एक जगह पे हम गए थे, वहां एक भाई कुछ खाने के लिए गया था और उसने किचन में कोई उनकी लड़की या कोई रिलेटिव का कुछ उसने बहुत उनको दूसरे को कमेंट्स करके बोला कि देखो ये आ जाते खाने के लिए, कुछ खराब शब्द बोले। और जो खाने वाला था उसने वो पीछे विंडो थी उधर से सुन लिया, हम भी उधरी थे, तो वो इतना खुश था वहां खाने के लिए क्योंकि उसने सुबह दोपहर 2 टाइम का कुछ नहीं खाया था, तो एक अधिकार से वो चला गया। तो उसको इतनी फीलिंग हुई कि वो खाना उसके गले के नीचे नहीं उतरा। तो सोचो हम भी कहीं ना कहीं, भूख तो सभी को लगती है लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो हमें मिल रहा है वो किस भाव से मिल रहा है, किस वृत्ति से दिया जा रहा है। आज भी अगर हम यज्ञ में देखें कि हम जो यज्ञ में दे रहे हैं, हमारे जो चावल मुट्ठी है या हमारा जो भी है, क्योंकि इस द्वापर से अंतिम जन्म तक तो हम पूरे पूरे विकारी हो गए, ना तो हमारा शरीर पवित्र रहा ना आत्मा पवित्र रही। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा जो धन होता है ना वो भी संपूर्ण रीति पवित्र नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मिक्स रहता है। तो अब आप सोचो अगर इसको भी देने में हम क्या करेंगे, अगर इसमें भी हम विचार चलाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रखेंगे, तो फिर वो स्वीकार कैसे होगा। देना तो शायद बहुत इजी है लेकिन आपने जिस वृत्ति से दिया है भगवान उसी वृत्ति से स्वीकार करेगा और उसी आधार से आपको फिर रिटर्न भी मिलेगा। क्योंकि जब यज्ञ में भी पुराने टाइम पे जो लोग देते थे, बाबा पहले उनकी वृत्ति देखता था किस भाव से दिया जा रहा है। शायद हमने एक बार और भी बताया था कि एक बार शायद मम्मा उस समय शरीर छोड़ चुकी थी और तब ये होता था कि दीदी बाबा के पास बैठती थी, सारा कुछ जो भी यज्ञ में आता है देना है, टोली देना है, मम्मा के टाइम भी दीदी बाजू में बैठेगी और बाबा के हाथ में देगी, फिर सब देंगे। तो उसमें 2 माताएं आई हुई थी जिन्होंने अपना कुछ सोना अलग अलग गठरी में छोटा सा पोटली में रखा था और वो दोनों माताओं ने दिया कि बाबा ये हमारा है और ये आप इस यज्ञ में, इस सेवा में लगा लो। तो जब पूरा हुआ तो दीदी को बाबा ने बोला, दीदी ये 2 थैली है, एक यूज कर लेना और एक अपने पास संभाल के रखना, समय आने पर बाबा ये आपसे ले लेगा। तो दीदी तो बहुत होशियार रहती थी एक एक चीज संभालने में। तो 1 साल लगभग 1.5 साल के बाद उसमें से एक माता वापस आई और उसने बाबा को बोला, बाबा हमारी ऐसी ऐसी कंडीशन है घर की, ये है वो है, जो मैंने दिया तब भी मुझे वापस कर दो। तो बाबा ने भी क्या बोला कि हाँ बच्ची बाप जानता है, बाप तुम्हारा संभाल के रखे, दीदी का वो दीदी से मांग के बाबा ने उसे दे दिया। तो देखो कहीं ना कहीं ये डिपेंड नहीं करता हमने दिया कितना या दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है हम सेंटरों पे भी अगर देते हैं तो सूक्ष्म में एक वृत्ति में रहता है कि हमने इतना दिया है, तो फिर हमारे विचार हमारा कर्म उस हिसाब से एक सूक्ष्म में रहेगा कि हमने इतना दिया तो हमें मिलना चाहिए। और अगर कई बार मान लीजिए पार्टी में हम कोई आते हैं, ग्रुप में किसी नहीं होता, किसी ने जितना था उससे ज्यादा दिया है और एक है जिसने कुछ भी नहीं दिया है, तो दोनों के आने में और यहाँ का यूज करने में बहुत अंतर होगा। एक थोड़ा थोड़ा डर के करेगा कि हमने तो कुछ दिया नहीं है तो हम कैसे स्वीकार करें, और एक कोई होगा मैंने तो इतना दिया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे रूम ठीक मिलना चाहिए, मुझे खाने पे इतनी लंबी लाइन वाइन नहीं चाहिए, कम से कम मुझे तो वीआईपी में चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं दे तो दिया है लेकिन वो थोड़ा बिजनेस जैसा हो गया है, एक धंधा जैसा हो गया। जैसे कोई व्यक्ति अगर ऑफिस में काम करता है सैलरी मिलती है तो अपने घर में भी देता है, अपने लिए भी यूज करता है, अगर किसी फ्रेंड को देना उधार देना उसे भी दे देगा या कहीं भिखारी को भी दे देगा, लेकिन हर जगह देते वक्त उसका एक अलग अलग भाव होगा। घर में देगा तो उसे कभी ये नहीं होगा कि मुझे वापस लेना है घर वालों से, फ्रेंड को देगा तो उसे याद रहेगा कि इसको दिया है अब इससे वापस लेना है। तो जब हम यज्ञ में दे रहे होते हैं तो क्या हमारे अंदर कोई सूक्ष्म भाव तो नहीं होता है कि हमने तो इतना सारा समर्पित कर दिया। जैसे कई हम मिलते रहते हैं तो कोई कहता है कि हमारा जितना तो हमने सब दे दिया, क्योंकि उसको बता बता के क्या किया, खत्म कर दिया, कम कर दिया। एक बार रमेश भाई ने ब्रह्मा बाबा से पूछा था कोई बात पे, क्योंकि वो तो सारा यज्ञ का देखते थे कि हाँ कितना देना है, तो बाबा से पूछा बाबा आप रिटर्न भी करते हो और यज्ञ में सब देते भी हैं लेकिन सबसे अधिक जमा किसका होता है, क्या समझते हैं सब जमा किसका होता होगा सबसे अधिक? हाँ उसका उसको दिया है। तो बाबा ने तो वैसे दो उत्तर दिए, दो बातें बताई थी। एक है पहला कि जिसने टाइम पर यज्ञ में दिया, और दूसरा जिसने गुप्त दिया, क्योंकि कई जगह हमारे कम से कम अपने यज्ञ में ये एक विशेष बात है कि यहाँ कोई देता किसी का नाम नहीं वो होता है, नहीं तो और जगह जाओ तो घड़ी भी होगी तो उसमें पूरी फैमिली का खानदान का नाम लिखा रहेगा, घड़ी में कितना बज रहा है वो पता भी नहीं चलेगा। यहाँ थोड़ा सा अपने यहाँ ये चीज यज्ञ में नहीं रखी गई है, बहुत अच्छी चीज है वैसे। तो मतलब कि ये दो बातें बोली कि जिसने दिया, जिसमें बाबा ने फिर मिसाल दिया जिन्होंने, ये एक अव्यक्त मुरली में भी बात आई थी कि जो मेरे बच्चे जो माताएं गरीब माताओं ने अपना फुरी फुरी बूंद से यज्ञ में दिया है, गुप्त दिया है और समय पे दिया है, ऐसे बच्चों के लिए भगवान बधायमान है। हमने कई जगह देखा है कि कई ऐसे लोग जिन्होंने दिया है, गुप्त दिया है और दिल से दिया है, आज जीवन तक भी भगवान उनके लिए कैसे कर देता है बड़ा अद्भुत लगता है। जैसे आपने ये मेडिटेशन हॉल ये सब जब बन रहा था तो विशेष कानपुर वालों ने इसमें सहयोग दिया था, और फिर उसके बाद बाबा मिलन का भी एक टाइम आया तो बाबा ने बोला कि बाप बच्चों का कर्जदार है, बच्चे बाप के नहीं। और फिर एक टाइम आया कि कानपुर में कुछ सेंटर पे हंगामा हुआ, सारा सामान जला दिया गया, तो बाबा फिर यज्ञ से ये सारा कुछ पूरा हुआ वहां, तो वो जो दादी थे गंगे दादी वो कहते देखो बाबा ने बोला था, क्योंकि वो दादी स्टेज पे ही बाबा से मिल रहे थे और बाबा ने बोला था कि बाप बच्चों का कर्जदार है, और आज कैसे बाप इसी टाइम पे रिटर्न कर रहा है वहां के लिए। फिर वो तो गंगे दादी ने सारा यज्ञ में दे भी दिया। तो एक बात यह है कि हमारा भाव किस रीति से उठता है जब हम कुछ दे रहे होते हैं, और एक बात यह भी आती है कि जब हम यज्ञ में अपना दे रहे हैं तो उस समय कहीं ना कहीं गुप्त कैसे रखा जाए, या गुप्त उसको हम रखते हैं या नहीं रखते हैं, चलो गुप्त नहीं भी रखते हैं तो सूक्ष्म में कभी देने का लेने का जो भाव आता है स्वीकार करने का। हमें एक मुरली और याद आती साकार में जिसमें बाबा ने बोला था कि जब कोई चीज देखो जो तुमने यज्ञ में दी है तो ऐसा मतलब देखने से भी संकल्प ना उठे ये वाली चीज मैंने यज्ञ में दी थी, जैसे ब्रजमोहन भाई बताते हैं कि एक बहुत विदेश का कोई कोट था, बहुत अच्छा था उनका, उन्होंने यज्ञ में दिया था और बाबा ने वो कोट एक धोबी घाट में सफाई करने वाले भाई को दे दिया और वो पहन करके मतलब कि धुलाई कर रहा था, तो उनको ये संकल्प आ रहा था बाबा ने कैसे को दे दिया, इसको इसकी कीमत का भी अंदाजा नहीं है और ये पहन के धुलाई कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब बाद में उन्हें ये फील हुआ कि देखो मैंने यज्ञ में दे तो दिया है पर शायद संकल्प से समर्पित नहीं किया है, क्योंकि दिया है पर कहीं ना कहीं अभी भी मेरे मन में ये भाव है कि अब उसका यूज कैसे होगा। देने के बाद तो ये चीज तो पराई हो जाती है ना, फिर अगर ये संकल्प उठ जाए कि उसको मैंने दिया और अब वो रिटर्न मतलब कि अब मेरे हिसाब से यूज हो, ऐसे हो वैसे हो, जैसे सेंटर पे भी कोई चीज दी जाती है तो फिर भाई बहनों के मन में उठता है ना कि ये चीज का यूज ऐसे होना चाहिए। तो एक तो ये चीज है कि हमने दिया, फिर ये बात भी आती है कि हमने यज्ञ से कितना हमारे ऊपर आ रहा है। आप सोचो हमारा जीवन जो है ये तपस्वी जीवन है, योगी जीवन है, अब हमारे ऊपर कितना यज्ञ से खर्चा हो रहा है। आप सोचो हम सेंटर पे जाते हैं, कितनी बहनें अपना जीवन सरेंडर करके हमारे लिए बैठे हैं। यहां हम मधुबन में आते, कभी सोचा है कि हमारे ऊपर कितनी सेवा चढ़ती है, हमारे जो बेडशीट पे बेडशीट है वो कितने लोग उस पर प्रेस करते हैं, धुलाई करते हैं, अपना टाइम निकालते, सफाई करी जाती है और फिर उसके बाद जो भोजन बनता है वो कहां कहां से कितने लोग अपना थोड़ा थोड़ा ला करके यज्ञ में देते हैं। तो अगर दो चीजें देखी जाए कि हमने दिया कितना है और उसको सूक्ष्म से कितना ले लिया है, क्योंकि दिया फिर सूक्ष्म से लिया तो वो तो इक्वल हो गया कहीं ना कहीं, या यूं कहे निगेटिव में भी चला गया क्योंकि किसी और की चीज अब वो हो गई और उसको लेना वो भी एक चोरी हो गई। भले जब हमारी थी अलग बात है, लेकिन अगर किसी और की चीज को अगर कोई लेता है तो हम क्या बोलते हैं, चोरी तो बोलते हैं। तो अब आप सोचो अगर हमारे मन में ये भाव आता है तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति से उस चोरी का हिसाब किताब हमारे ऊपर भी तो चढ़ता है। तो एक चीज ये देखनी, दूसरी ये चीज भी चेक करनी कि जब से हमने ये ब्राह्मण जीवन में आए या हमारे दिव्य अलौकिक जन्म हुआ है, हमारे ऊपर कितनी आत्माओं का ऋण चढ़ा है। और नहीं तो हम समय तो लेते हैं ना किसी का, कितनी बार हम सब बहनों का समय लेते हैं, दीदी थोड़ा ये बात है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, और कोई कोई ऐसे भाई होते हैं डिप्रेशन में तो कोई एक एक घंटा भी ले लेते हैं, या यूं कहें मधुबन आते हैं तो कहीं ना कितने लोग हमारी सेवा में लगते हैं, बाबा की मुरली सुन रहे, ये भी एक कम बात है क्या कि जो परम आत्मा है परम पवित्र है वो पतित दुनिया में पतित शरीर में आया हुआ है किसके लिए, तो कहीं ना कहीं उस कितनी बड़ी बात है। अगर किसी को हम अपने घर में भी बुलाते हैं कि भाई आ जाओ ये काम है हमारा करना, तो हमें भी उसका लगता है कि इसका टाइम लिया, इनका समय लिया, तुम क्या बोलते थैंक यू आपका हमने समय ले लिया, तो एक सूक्ष्म भाव आ जाती कि हमने इनका समय ले लिया। तो कभी ये विचार आता कि हमने भगवान का कितना समय लिया है, कितना उसका पालना ली है, अभी उसका रिटर्न कैसे करेंगे, क्योंकि जो लिया है फिर देना भी तो उसी लेवल पे पड़ता है। जैसे जब कृष्ण वो सुदामा चावल देते हैं और कृष्ण खाते हैं, तो जब लक्ष्मी मना कि रुक्मणी रोकती है तो कहती कि क्या आप सब दे देंगे, आप सब दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, तो कृष्ण कहते हैं कि मित्रता तो ये कहती है कि जो भी है वो दो, क्योंकि उसने भी अपनी उस गरीबी की कंडीशन में उसका जो कुछ भी था कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। तो अभी मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि मेरा भी जो कुछ है मैं उसे सब दे दूं, अगर मैंने अपने लिए कुछ बचा के रखा तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, सौदा हो जाएगा, ये अपने लिए बचा लिया। तो जैसे मित्रता तो यही कहती कि मित्र के लिए जैसे उसने मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, वैसे मैं भी उसको अपना सब कुछ अर्पण कर दूं। और एक चीज ये भी है कि कई बार सब कहते हैं बाबा मदद करो, बाबा सहयोग करो, तो जरा अपने आप से भी अगर हम एक बार पूछे कि हमने यज्ञ में कितनी मदद करी, कितनी सहयोग करी है, कि ऐसा तो नहीं कि सारा टाइम हमने मदद ली ही है, दी कहां तक है। और उसमें भी प्रश्न ये उठता है कि इस समय के अनुसार आज यज्ञ में किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। साधना तपस्या, क्योंकि इस समय ज्यादा जरूरत है शक्तिशाली वायुमंडल की, सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी पवित्रता की। आज अगर कहीं ढूंढने चले जाओ, कोर्स कराने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, धन से सहयोग करना वो भी मिल जाएंगे, अगर कोई प्रोग्राम करना है तो अरेंज करने। कई कई बार ऐसा होता है कि सेवा, ये समझो ये टेबल उठाना है तो दो लोग भी उठा सकते, एक लोग भी उठा सकते हैं, और उठाने वाले 10 लोग हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अपनी वृत्ति से वायुमंडल को शुद्ध करना, अपने वाइब्रेशन से अन्य आत्माओं को ऊपर उठाना, उनकी स्थिति ऊंचा करना। अब आप सोचो, कहीं ना कहीं अगर कोई आत्मा की स्थिति हमारे व्यवहार के कारण गिरती है, हमारे किसी संस्कार के कारण गिरती है, तो फिर ये क्या हुआ? कहीं ना कहीं हम यज्ञ में विघ्न रूप हैं। अगर हमारे निगेटिव संकल्प, अगर हमारे निगेटिव वाणी, या फिर हमारा निगेटिव कोई कर्म है, तो वो भी कहीं ना कहीं तो प्रकृति को जा रहा है। और जो आत्माएं इस प्रकृति को शुद्ध कर रही और हम उसको निगेटिव दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम तो यज्ञ में तो फिर विघ्न रूप हो गए। चलो एक है कि हम कर नहीं सकते, लेकिन हम बिगाड़ तो नहीं रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें जो सूक्ष्म में कहीं ना कहीं हम देने के बजाय लेने के निमित्त बनते और उसको निगेटिव करने के भी निमित्त बनते हैं। क्योंकि शुरू से ही यज्ञ में बाबा ने जो सिखाया है, एक एक चीज का महत्व रखना, एक एक पाई पैसे का इंपॉर्टेंस, और सबसे ज्यादा बात आती है कि जो भी हमारा है वो हम ही को ही रिटर्न होके मिलना है। तो एक, क्योंकि सूक्ष्म धन का भी बहुत महत्व होता है जो हम दे रहे हैं। इसमें एक चीज याद आती, एक बार ये जयंती बहन की जो माता जी थे, ये भी ज्ञान में चलते थे, और वो उनका भोग था उस दिन का, सतगुरुवार का, और भोग में क्या था कि वो फल लेके उन्हें जाना था, तो उनकी माताजी रास्ते में मिली और उन्होंने बोला चलो चलो दे देते हैं। तो होता ना आपस में, तो पैसे कहीं ऑटो से या रिक्शे से जाते हैं तो कोई एक व्यक्ति जानने वाला होता है, दे देता है। तो जब भोग लगा और जब संदेशी ने बताया कि बाबा आज इस माता का भोग है, तो बाबा ने कहा इस माता का भोग नहीं है आज, ये भोग इस माता का है। क्योंकि धन किसका लगा है? जिस आत्मा का धन लगा, फिर भोग भी फिर उसके निमित्त हो गया। तो सोचो महत्व इस बात का है कि धन किसका लग रहा है और किस वृत्ति से दिया जा रहा है। ये अपने यज्ञ में सबसे अच्छा मिसाल है मम्मा का। अगर देखा जाए कि सारे ब्राह्मण परिवार में सबसे कम धन मम्मा का ही लगा उस टाइम के भी अनुसार, लेकिन फिर भी उसको क्या मिल गया? धन की देवी बन गई। और कई बार साकार मुरलियों में भी ये बात आती रहती है। तो एक चीज ये भी आती है कि हमारा धन या हम जो दे रहे हैं ये में, उससे ज्यादा महत्व है हमारी वृत्ति। हम अपना समय, श्वास, संकल्प ये बाबा को दे चुके हैं या नहीं, या यूं कह हमारा जो ये शरीर है, ये जीवन है, या ऐसा तो नहीं कहीं आ तो गए ब्राह्मण जीवन में, फिर कहीं ना कहीं देने के बजाय लेने का पार्ट ज्यादा चल रहा है। ऐसे में क्या होता है, जब हमारा ये सूक्ष्म हिसाब किताब शुरू हो जाता है, तो इसलिए फिर वो स्थिति भी नहीं बन पाती है। जैसे बाबा ने कई बार, अगर हम अपना शुरू का ब्राह्मण जीवन देखें, तो जब शुरू में आते हैं तो बहुत उमंग उत्साह होता है, बहुत लगन होती है, फिर धीरे 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 क्या होता है, वो बढ़ता क्या है, वो फिर कहीं ना कहीं कम होने लगता है। फिर कई बार कहते वो पहले वाली स्थिति नहीं रही, जो पहले वाला जो नशा होता था, जब मधुबन आते थे तो क्या नशा होता था, क्या उमंग होता था, जिसको देखते थे खुशी आती थी, गम दुनिया ये सब क्या होता है भूल जाते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय हमारे ऊपर कोई निगेटिव इतना बोझ नहीं होता है, क्योंकि उस समय आत्मा के ऊपर जो बोझ होता है वो केवल 63 जन्म जो हमने पाप कर्म किया है, और जो अभी अभी कलयुग जिस जीवन में हम आए हैं, जिस जगह जन्म लिया, उस अनुसार ही उतना ही होता है। पर जब यहां आ जाते हैं तो यहां 1 का 100 गुना बनता है, और सूक्ष्म जो हमारा लेने का पार्ट होता है शुरू हो जाता है, गुप्त रीति संकल्पों से या कुछ कर्म से, व्यवहार से, क्योंकि वो देना कम होता है लेना शायद सबसे अधिक होता है, और गुप्त में तो बहुत ज्यादा होता है। एक दीदी की बात याद आती है, शायद ये कोटा हाउस में उस समय यज्ञ था अपना, और अंगना भाई का भी सबने नाम सुना होगा, बाबा की मुरली में भी आता है। तो एक बार बेंगलोर की पार्टी आई हुई थी और बाबा ने दीदी को बुलाया और दीदी को बोला कि दीदी कुछ टोली जो है वो बेंगलोर की पार्टी आई हुई है, उसमें अंगना बच्चे के लिए भेजना। तो दीदी ने बोला ठीक है बाबा, और दीदी ने वो टोली तैयार करी और एक बहन को जो थी उसको बोला कि ऐसा ऐसा है, बाबा ने बोला है और ये अंगना भाई को देना है। तो पार्टी चली गई, फिर जब पार्टी चली गई तो बाबा ने दीदी को बुलाया और दीदी से पूछा, दीदी वो जो बच्चे के लिए बोला था टोली देने को अंगना बच्चे को पहुंच गई? तो दीदी ने बोला हाँ बाबा पहुंच गई होगी। तो बाबा ने बोला पहुंच गई होगी मतलब? तो दीदी ने बोला एक बहन को मैंने बोला है देने को। तो बाबा ने बोला उस बहन को पूछ के आओ, मतलब वो कोई पार्टी वाली नहीं थी, जैसे सेवा कहते हैं आप कर दो। तो दीदी ने वो बहन को पूछा और वो बहन ने बोला दीदी मैं तो भूल गई। तो जब दीदी ने ये बात बाबा को बताई तो बाबा ने बोला दीदी अगर आप वो टोली उस तक पहुंचती तो वो बच्चा टोली खाता, उसको याद बाबा की आती और उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती, पर वो इस अनुभव से, इस चीज से वंचित रह गया। इसका सारा सूक्ष्म हिसाब किताब आपके ऊपर गया। तो अब आप सोचो कितना ज्यादा हमारा सूक्ष्म का हिसाब किताब होता है। हम ना जाने कितनी बार बोल देते हैं ऐसे कि भूल गए, याद नहीं। कभी सोचा कि कितना इसका हिसाब? अब हम ये जरूर सोचते हैं कि ये भाई को मैंने कोर्स कराया था, ये प्रजा हमने तैयार करी है, ये हमने इनको सेंटर खोल के दिया, ये चीजें हमें याद रहती। लेकिन हमें ये याद रहता है कि हमारे कर्म से कितना निगेटिव हुआ है। शायद अगर एक तराजू लिया जाए और उसमें हमारा जो चावल मुट्ठी है वो रख दिया जाए और जो हमें मिला है या जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, एक है मिला है और एक है एक्स्ट्रा हमने ले लिया है, वो किया जाए तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि ये चीजें जो हैं बहुत सूक्ष्म होती हैं, बहुत गुप्त होती हैं, कि हम जो भी लेन देन करते हैं, चाहे आपस में करते हैं, सेंटर पे करते हैं, उसका सारा कुछ हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। हमें भविष्य में तो मिलता है लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म में भी मिलता रहता है, और समय आने पर भी वो मिलता है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं समय आने पर बाप रिटर्न करता है। जैसे भागवत में एक चीज देखी है कि कृष्ण ने जो है द्रौपदी को क्या किया, उसकी साड़ी रिटर्न करी टाइम आने पर। क्योंकि वो कहते हैं कि जब शिशुपाल का वध कृष्ण करते हैं तो वो उनके हाथ से खून निकलता है, तो द्रौपदी अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ती है, वो उससे वो लपेट के बांधती है। तो कृष्ण कहते हैं समय आने पर इस एक एक धागे का ऋण जो है भगवान उतारेगा। तो आप सोचो ये संगम का इतना छोटा सा समय है और हम अपना एक एक जो कना दाना, अपना श्वास संकल्प में क्या कर रहे हैं इस समय, भगवान को लपेट रहे हैं, या यूं कह भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और ये सारा रिटर्न हमें आगे मिलने वाला है। और इसका अगर हमें प्रैक्टिकल कुछ देखना है तो हम अपनी दादियों या ब्रह्मा बाप का उदाहरण देख सकते हैं, उनके अंतिम जन्म तक। आज शायद प्राइम मिनिस्टर को भी इतना सुख सुविधा नहीं भोगा होगा जितना ब्रह्मा बाबा ने भोगा होगा। हीरे जवाहरात से आज तो कहीं कहते देखने को नहीं मिलता, उस समय सोचो बाबा के पास वो था, और बाबा के पास नहीं सबके पास था। दीदी के पास तक फोर व्हीलर थी उस जमाने में, ब्रह्मा बाबा के पास तक थी। और सबसे मुख्य चीज है अंतिम जन्म तक वो आत्माएं सुखी रही, अंतिम जन्म तक, क्योंकि इस जन्म में कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज अपना सब कुछ समर्पित किया। इसलिए तो दिखा है कि कृष्ण को सारा चावल अपना जो भी था वो अर्पण कर दिया और कृष्ण ने भी वो स्वीकार कर लिया, और फिर रिटर्न किस आधार पे हुआ? कितने सोने के महल और सब कुछ एक ही दिन में, एक ही टाइम पे कहा विश्वकर्मा के, उसको कह के पूरा बनवा के दे दिया, सब कुछ कर दिया। तो ये टाइम शायद वही टाइम है भागवत का, ये रियल एपिसोड चल रहा है जहां पे हम सब आत्माएं सुदामा है, और अब ये देखना है कि हम उसको कितना रिटर्न कर रहे हैं, हमारी क्वांटिटी चावल की, हमारे देने की क्वांटिटी कितनी है, ये इतना महत्व नहीं करता है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। डिपेंड सारा ये करता है जब हम रिटर्न कर रहे हैं या बाप को दे रहे हैं तो उस समय हमारी वृत्ति क्या है, किस तरीके के भाव हमारे उठ रहे हैं, सेवा करते हैं तो किस तरीके के भाव उठते हैं, या अगर हम अपना टाइम किसी को देते हैं, मान लीजिए कोई सेवा भी दी गई और उस समय विचार उठा ये हमारा योग का समय था, ये जब भी होता इसी समय आते हैं, अभी सेवा तो कर दी किसी तरीके के, मर मर के वो कर दिया, लेकिन उसका क्या जमा होगा फिर, बल्कि शायद निगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि शायद अगर जो कर्म किया है, जो सेवा करी है, उस सेवा का जो आगे रिस्पॉन्स होगा या जो भी होगा वो निगेटिव में निकलेगा, क्योंकि दिया करा ही निगेटिव वृत्ति से गया है। मान लो कि किसी माता को बोला गया और रोटी बनाना थोड़ा ये है, अब वो नहीं, उसकी वृत्ति उस समय खराब है और निगेटिव रीति से वो सेवा कर रही है, तो अब वो जो भी खाएगा, जो भी उसके पेट में जाएगा, फिर क्या होगा उसकी भी तो वृत्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेवा नहीं करना और ज्यादा विघ्न हो गया है। जैसे बाबा भी कई बार मुरली में आया है कि अगर स्थिति खराब है, कोई सेवा जो है वो स्थिति को गिरा रही है, तो फिर क्या करो, क्योंकि उसी में ही कल्याण है, क्योंकि आप जो करोगे उससे ना जाने कितनों का गड़बड़ होगा हिसाब किताब। तो इसलिए ये भी देखना है कि सेवा से ज्यादा महत्व है कि आपकी स्थिति कैसी है, क्योंकि ये जो यज्ञ चल रहा है या ये इस यज्ञ से जो कार्य होना है वो बहुत सूक्ष्म रीति, क्योंकि पवित्रता के आधार पर नई सृष्टि आने वाली है, हमारे शुद्ध शुभ संकल्प के आधार पे प्रकृति के पांचों तत्व परिवर्तन होने हैं, ज्ञान के आधार से नहीं होना है कि ज्ञान सुनाने के आधार से, का संडे की भी मुरली में भी ऐसे ही था। तो आप सोचिए कि हमारा इस कार्य में कितना योगदान है, हम इसमें क्या मदद कर रहे हैं भगवान की। और दूसरी चीज एक और याद आती कि जब कोई चीज हम किसी को देते हैं तो वहां देखा यह गया कि हमारा रिलेशन कैसा है, किसी मित्र को या किसी अपने साथ वाले को अगर उसके लिए रात भर हमें जागना भी पड़ता है, बीमार है, तो कोई दुख नहीं लगता, कोई फीलिंग नहीं आती, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा जो बाप के साथ वो कनेक्शन है वो लव वाला है या नहीं है, वो किस आधार से हम उसके साथ प्रीत निभा रहे हैं। क्योंकि अगर हम, मान लीजिए हमारी अपनी भी कोई चीज होती है तो पहले हम व्यक्ति को देते किसको जरूरत है नहीं जरूरत है, या काम की नहीं है तो दे दिया, लेकिन कोई अगर हमारा बहुत खास है तो हम अपने हिस्से का भी निकाल कर उसको दे देते हैं। तो जब एक तो ये बात हमारी वृत्ति, दूसरी चीज है कि भगवान के साथ, बाबा के साथ हमारा लव किस तरीके का है, वो लव का जो बेस है वो कैसा है। तो जो तब कहीं ना कहीं देने में वो चीज लेना नहीं आएगा, फिर क्या होगा कि जो हमारा स्वीकार होगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो यज्ञ में दिया या जो हम अपना समय श्वास संकल्प या सेवा जो दे रहे हैं वो स्वीकार भी किस आधार पर हो रहा है। क्योंकि प्रेम के आधार पर अगर हम कुछ कर रहे हैं तो 100% जो है स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि कई पुराने पुराने माताएं बहने उन्होंने ऐसी हालत में किया है जो शायद अगर आज करना पड़े तो बहुत मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि गुलजार दादी तो लखनऊ का उदाहरण सुनाती हैं कि कैसे वो एक एक कटोरी में लेके आते थे, एक एक सेब लेके आएंगे, और एक बार एक माता जो थी एक कटोरी में घी लेके आई, तो अभी तो दादियों को तो पता, पूछा क्यों इतना घी कैसे मिल गया, कैसे लेके आई, तो वो माता ने बोला कि दादी ये जो सबका रोटी पे घी लगता है और जो मेरे रोटी पे घी लगता है ये उस एक एक चम्मच का बचा हुआ घी है जो लेके आए हैं। अब आप सोचो कि कितना, किस प्रेम से वो स्वीकार होगा। कई बार होता है ना, हम लोग भी कुछ चीजें नहीं खाते, लेकिन जब कोई माता या कोई बहुत प्रेम से देता है तो उस समय क्या होता है, कितने भाव से हम स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई अभिमान से हमारे लिए कुछ दे रहा है या अभिमान से कुछ हमारे लिए कर रहा है तो स्वीकार हम कर पाते हैं, कितना भी हो वो स्वीकार ही नहीं करेंगे, साफ मना कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा लव, हमारा जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं सुदामा या केवट या फिर शबरी की तरह झूठे भी बेर थे तो भी क्या किए, स्वीकार कर ली है। ये महत्व नहीं है, कई बार कोई कुमार पूछते हमारे पास धनी नहीं है, हम यज्ञ में नहीं, आपके पास पवित्रता रूपी धन है ना, वो दे सकते हो। जो नहीं है वो देने का संकल्प आ रहा है, पर जो है उसके लिए क्यों नहीं संकल्प आ रहा है? हमारे शुद्ध संकल्प है वो हम दे सकते हैं ना, उसका संकल्प क्यों नहीं आ रहा है? धन तो कोई बड़ी बात नहीं बाबा, कई बार वो 4 दिसंबर की मुरली में भी बाबा ने बोला, चोर गेट का पूरी एक मुरली है, उसमें बहुत बाबा ने मिसाल दिया है कि धन का तो क्या है, वो भर जाएगा, खाली नहीं रहेगा, देने वाले लाइन में लग जाएंगे, लेकिन इस समय जो जरूरत है उसको देना ज्यादा महत्व है। जैसे यहाँ पे अपनी दादी का भी एक अनुभव सुनाया था, ये चुंगी दादी, आप जानते हो उनको? हाँ, चुंगी दादी गुजरात में थी, बहुत पुरानी दादी हैं और इन्होंने शरीर भी अपना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए बहुत कोई यज्ञ में जानता नहीं है। अच्छा, तो एक बार की बात है कि इन्होंने, दादी ने क्या किया कि ये पूरा प्रोग्राम रखा कि मेला कराना है, और मेले में सबका वो व्यवस्था करी जा रही है कि इसका टेंट इधर लगेगा, इधर वो होगा, इधर पर्चे छपेंगे, इधर प्रदर्शनी लगेगी, ये चित्र लगना है, ऐसे लगना है। और उनकी बहनें जो साथ वाली, वो कह रही दादी को पता नहीं क्या हो गया, यहाँ किराया देने का पैसा नहीं है और इतना बड़ा पूरा बारात लगाई जा रही है। तो दादी को बोले, दादी ये सब इतना मत सोचो, जब थोड़ा आगे होगा तो करेंगे कुछ छोटे रूप में। दादी को बोले, दादी किराया देने का पैसा नहीं है। तो दादी कह रही, चुप रहो, उससे मैं करा के दिखा दूंगी। तो कितना नशा है, हम अगर सोचते हैं तो हमें तो पहले डर हो जाता, होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिलेशन ही कहीं ना कहीं उससे वो वाला नहीं है। कई बार हम किसी से मदद मांगते तो हमें लगता है पता नहीं देगा नहीं देगा, लेकिन किसी से बहुत नजदीक का संबंध है, पता उसे पूछने की जरूरत नहीं, उसे तो करना ही है। तो सोचो दादी का कितना नशा, उससे मैं करा के दिखा दूंगी। और वो बहनें सोची होगा नहीं होगा, तो वो क्या हुआ कि कराची में जो उनके हस्बैंड थे दादी के, किसी ने उनसे कर्जा लिया हुआ था और उसको सपने में सारी चीज बाबा ने बता दी थी, ये मेरी बच्ची है, इस स्थान पे रहती, ये पता है, पूरा पता बता दिया। और उस भाई जो है वो पता जो भी उसको सपने में बताया गया वो नोट करके वहां गुजरात आके वो दिया। और दादी ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने सारी चीजें बताई कि मैं आपके पति से कर्जा लिया था और ये मुझे सपने में पता चला, ये पता आपका ऐसे पता चला और मैं ये आपको देने आया हूं। देखो कितना सहज है, लेकिन इसमें डिपेंड ये करता है कि हमारा लव कितना है, हमारा प्रेम भाव कितना है। अभी कई बार हम कुछ करते हैं उससे पहले हमें डाउट हो जाता है, तो डाउट हुआ तो माना फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं भगवान भी फिर पीछे हट जाता है, क्योंकि जिसका निश्चय संपूर्ण है तो उसको मदद भी फिर संपूर्ण रीति ही मिलेगी। क्योंकि द्रौपदी ने भी क्या किया, पहले किसको पुकारा? हस्बैंड को, अपने गुरु को, अपने सब जो भी में होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको। तो भगवान की मदद का भी आधार कहीं ना कहीं हमारा जो भाव है, विचार है। तो ये डिपेंड करता है कि हम जब भी कुछ करते हैं, चाहे कोई भी कर्म, एक झाड़ू भी लगा रहे, हमारी वृत्ति कैसी है, बहन जी देख रही है कि नहीं देख रही है? एक भाई था, वो हमें झाड़ू लगाना था सेंटर पे और उसे पोछा लगाना था, तो हमने झाड़ू फटाफट लगाया और वो पोछा और बाल्टी लेके खड़ा है। हमने कहा, क्या है तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, अभी चलना है, तुम्हें छोड़ना है हमें। तो फिर बाद में कह रहा है, दीदी अभी ऊपर से आ रही है ना। तो माना कि हमें कर्म करना है, हम किसको दिखा रहे हैं? तो हम कई बार देते हैं तो भी हम सोचते बहने तो देखती नहीं, भंडारी में डाल दिया, क्योंकि जब देखेंगे कि हमने इतना दिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, कि हम जब आएंगे तो हमारे लिए सीट खाली कर दी जाएगी, मधुबन जाएंगे तो बहन जी हमारे लिए अलग से अच्छा एकोमोडेशन ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने सूक्ष्म में तो सब ले ही लिया ना, शायद ज्यादा ही ले लिया। तो ये सब भी विचार की बात है। ठीक, समय पूरा हो रहा है ना? वो तब होगी जब कहीं बहुत प्रेम होता है। कई बार हमारा कोई बहुत जिगरी मित्र होता है ना, अगर हम उसको कुछ देते हैं, वो देता भी तो कहते नहीं नहीं रखो रखो, तो उससे हमें लेना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहां अपनापन है। अगर एक माँ अपने बच्चे को देती है, करती है, दूध पिलाती है, वो हिसाब नहीं रखती कभी कि इसको इतना दूध पिलाया है तो अभी इतना निकालना पड़ेगा इसका। बाप शायद फिर भी थोड़ा सा रख ले कि मैंने इसको इतना पैसा खर्चा किया है। तो ये डिपेंड करता हमारे, क्योंकि क्या है, द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक तो हमने धंधा ही किया है, कि इसके लिए मैंने इतना किया उसके, और अंतिम जन्म तक ये सब तो संस्कार तो काम करेंगे ही ना, तो इसलिए ये ज्यादा रहता है कि हम जब कर रहे हैं तो हमारा उस समय मतलब कि प्रेम भाव कैसा है। अगर बाबा से बहुत जिगरी प्यार है तो हम कहीं ना कहीं हमारे सूक्ष्म में भी नहीं आएगा कि हमने किया है। अगर देखा जाए किया कुछ नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं जो भगवान ने हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। आज आप देख लो संसार में तो सबको अनुभव है ना आत्माओं का, करते हैं मिलता क्या है फिर उनसे, कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा, कहीं ना कहीं उनसे कुछ हमें ऐसा मिलेगा कि कहेंगे मैंने इसके लिए इतना किया और आज इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं हम जिनके साथ करते हैं जो भी करते हैं, रिजल्ट हमें क्या मिल रही है, सब नकारात्मक मिल रही। और अगर देखा जाए जो बाप के साथ, अगर शायद एक रीति से देखें कि हमको कोई, अगर किसी की हमें एक बुराई पता चल जाती फिर हमारे लिए उसकी भावना बदल जाती है। कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाने वाला अगर उसका एक कर्म हमने गलत देख लिया तो फिर सारी वो जैसे उसके प्रति जो भी फीलिंग थी वो फिर पहले वाली कभी नहीं हो पाती है। आप सोचो हमारी जो बाबा हमारी कितनी नालायकियां देखता होगा, ना जाने कितना कुछ चलाकियां करते हैं, कितना खुरापात करते हैं। ऐसा कोई हो सकता है प्यार करने वाला कोई इंसान, कोई मनुष्य, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त? और फिर भी अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं हम जो अपनी जो ये ईमानदारी से जो अपना व्यवहार निभाते वो तब भी हम इंसानों के प्रति निभाते हैं। इतनी मतलब कि अनुभव होने के बाद भी आज भी पहले कुछ होता है तो सबसे पहले हमें कोई व्यक्ति याद आता है कि इनको फोन करो, उनसे पूछो, इसको पूछो, ये फीलिंग हो रही है, ये हो गई, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे अपनी बात किसको सुनाएं, किससे अपनी बात शेयर करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में अभी भी देहधारी को प्रति एक उम्मीद है, एक उनके प्रति भावना है कि शायद ये कुछ कर सकते हैं। और जब नहीं कुछ होता है तो बाबा तो मदद कर, उस पर भी फिर बाबा पे डाउट भी होता है, पत्नी करेगा नहीं करेगा, वो तो बैठा रहता है, किया ही नहीं कुछ। तो अगर करने से पहले तो ये भी देखना कि हम क्या मतलब कि हमारा जो कहीं ना कहीं ये जो आधा हाफ है उस पे निश्चय, तो हाफ निश्चय पे तो वो कुछ भी नहीं करने वाला है, निश्चय भी फिर संपूर्ण चाहिए होता है। कोई और प्रश्न है, कुछ पूछना है तो? बाकी तो सुदामा मुट्ठी का चावल का भी जो बात है, इसमें बस मेन चीज है कि हमारा संपूर्णता देने में संपूर्ण, क्योंकि यही टाइम है देने का। जो बोला ना कि भागवत का ये एपिसोड चल रहा है, अब अपने आप से पूछना है कि हम कौन है, हम सुदामा है या दुर्योधन है? क्योंकि दुर्योधन ने भी ऑफर करी थी ना मेवे की, और साग के लिए भी की थी जी। क्योंकि क्या है, हमारी बुद्धि ज्यादातर खाली यूं रहती है क्योंकि हमें रहता है किसी से रिलेशन भी बनाते तो सोचते ये ज्यादा अच्छा, ये हमारे लिए भविष्य मदद कर सकता है, तो देते हैं। तो एक ये भी रहता है कि इनको दिया ना भविष्य में ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, या अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये रहता है कि आज मैंने इनकी बीमारी हालत में मदद करी है तो कल ये भी हमारे लिए करेंगे। तो इस तरीके के भी हमारे भाव रहते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो मतलब कि भगवान के प्रति देना, तो उसके लिए जो मेन बात है कि हमको वहां पे हमारा कनेक्शन बहुत गहरा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे अच्छा मिसाल बस माँ का है, क्योंकि वो उसका इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि उसको कभी भी सपने में भी संकल्प नहीं उठेगा कि ये आज दिया है तो कल मुझे ये रिटर्न करे इतना। और जब तक वो प्रेम भाव नहीं आएगा, क्योंकि दादियों को क्यों आया इतना, क्योंकि वो कभी उनको ये पहली चीज है कि उनको कुछ लेने की संकल्प भी नहीं उठा, क्योंकि लेने का तब संकल्प उठता है जैसे अगर कोई हमारा बहुत अपना है तो वो हमारे लिए खुद उस टाइम पे खड़ा रहेगा, उसको कहने की भी जरूरत नहीं है, मांगने की भी जरूरत नहीं। जैसे बच्चा है उसको पता है मेरी माँ खुद ही करके देगी, मांगने की भी जरूरत नहीं। तो बाबा पे इतना निश्चय हो कि बाबा को ये बोलें कि बाबा मेरे लिए ये मदद कर दो, ऐसा कर दो, तो क्या मतलब कहीं ना कहीं हमें निश्चय नहीं है कि वो करेगा। अगर मान लीजिए हमारा प्रेम सच्चा है तो वो तो बंधायमान है करने के लिए। और आज तक भी देखो हमने क्या कभी सोचा था कि भगवान ऐसे मिलेगा, मिल गया ना। और अगर हम नहीं भी करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए उतना करके भी देगा, और वो कर रहा है। मेन चीज है कि हमने उसके लिए कितना किया है, क्योंकि सारा दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे विचार, हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, क्योंकि कर्म के हिसाब किताब से हम बच नहीं पाएंगे। नकारात्मक है तो उसमें भी वो साक्षी हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो भी उसे देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, चाहे कैसे भी दे। बोला है ना कि एक मुरली में, शिवरात्रि की मुरली थी जिसमें बाबा ने बोला है कि जिनकी साफ दिल है, सच्ची दिल है, बड़ी दिल है, ये तीन शब्द बोले थे, ऐसे बच्चों के लिए दुनिया के अंतिम समय तक चाहे कैसे भी हालात हो जाएं, भगवान दाल रोटी की गारंटी के लिए बंधा हुआ है। सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। हमें याद है उस समय हम सेंटर पे थे तो मुरली चल रही थी अव्यक्त बाबा की, ऑडियो से चलती थी। उस समय तो ये टीवी का इतना नहीं था, कहीं कहीं आईपी डिस लगा था, तो हम उस समय सेवा कर रहे थे ऊपर, तो वो पूरी बुद्धि में जैसे वो लाइन सहित हमारे छप गई कि मतलब कि कितनी बड़ी बात है। तो इसके लिए हमें कहना ये चीज तो कहीं ना कहीं संदेह लाता है ना। जैसे मम्मा कहती थी कभी भी बाबा के लिए वो कहे कि बाबा ये करो, तो कहते बाबा का प्रेम इतना हमारे से है कि हम जहां पांव रखेंगे हमारे पांव रखने से पहले वो व्यवस्था कर देगा। उसके लिए उसको बार बार कह करके जताने की जरूरत नहीं है कि हमारा उसका रिलेशन दूर का है, अपनापन है। तो सोता देखो, हमारे जो अपने होते हैं हमारे दुख के टाइम पे खुद ही आ जाते हैं, खुद ही उस समय हाथ बढ़ाते हैं। तो हम ऐसा समझते भगवान या बाबा हमारे लिए कुछ करे, आप अपना रिलेशन ही ऐसा बनाओ ना कि आपको कहने की जरूरत ना पड़े, संकल्प करने की जरूरत ना पड़े, अलग से योग करने की भी जरूरत ना पड़े कि बाबा ऐसा कुछ करके दो। आपका रिलेशन ऐसा हो कि आपका बाबा के प्रति प्रेम ऐसा हो कि आपको ऐसा लगे कि आप बिना कहे वो खुद ब खुद आपके लिए हाजिर रहता है। दादियों का तो मिसाल भरा पड़ा है उनके अनुभव से। ठीक, और क्या। चलो दीदी की एक दो बात सुना दे। दीदी का मास है और दीदी की विशेषता, दीदी एक चीज कुमारों को बहुत अच्छा वो सुनाती थी। एक बहुत पुराने भाई है, उनको अपने पास एक दिन रूम में बुलाया। अक्सर दीदी ने अगर रूम में बुलाया तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, जरूर कुछ मिस्टेक हुई है, हाँ कुछ हुआ जरूर है। अगर अलग से बुलाया है, संगठन में नहीं, क्योंकि शिक्षा उन दिनों अकेले में दी जाती थी। तो दीदी ने एक भाई को बुलाया और उनको बोला कि देखो, तुम पहले पूछा तुम क्या हो, तो बोला मैं ब्रह्मा कुमार हूं। तो दीदी ने कहा बस, तो कहा और क्या। तो दीदी ने बोला देखो, सफेद कपड़े पहन लेना, ज्ञान सुन लेना और बैच लगा लेना, तो ये ब्रह्मा कुमार हो गए। ये बात सही है, ये सब है और बहुत है, कॉमन है, लेकिन तपस्वी कुमार होना ये इतना सहज नहीं है। आज किसी से भी पूछो तुम ब्रह्मा कुमार, बोलेंगे हाँ ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमार है हाँ। लेकिन अगर अपनी दिल से ये कोई पूछे कि क्या मैं तपस्वी कुमार हूं या मैं तपस्वी कुमारी हूं, तो इसमें शायद ना निकले। तो दीदी ने बोला हमेशा ऐसा लक्ष्य रखो, बुद्धि में ये रखो कि मैं तपस्वी कुमार हूं। तो ये दीदी की एक शिक्षा रहती थी, कई भाइयों से हमने सुनी। दूसरा दीदी कहती थी हमेशा चढ़ती कला वाले का संग करो, ब्राह्मण बहुत सारे हैं। और कई ऐसे हैं, दीदी ऐसे भी कह देती थी कि संग से बचना, संग की संभाल करना, हमेशा तपस्वी आत्मा का संग करो। दूसरी चीज दीदी की विशेषता एक ये थी कि दीदी को परखने की शक्ति बहुत थी। वो कुछ भी आपके मन में क्या चल रहा है वो तुरंत उस आधार से डिसीजन ले लेती थी। बाकी दीदी को भी बहुत बंधन था, बहुत सहन करना पड़ता था, क्योंकि दीदी का जो घर था वो तो ठीक था, माता पिताजी, क्वीन मदर दीदी की माँ का नाम था, तो वो तो भी परिवार तो उधर का ज्ञान में चलता था, पर जहाँ शादी हुई थी वो बहुत विरोधी था। तो एक बार क्या हुआ था कि इतना बंधन होता था कि दीदी को एक बार उसके युगल ने थप्पड़ मारा, क्योंकि बाबा तो क्या कहता था दीदी को संभाल के, दीदी को बोलता था आप संभाल के चलो। दीदी कई बार कहती थी बाबा, वो कहता सिनेमा चलो, तो बाबा कहता था बच्ची चली जाओ, लेकिन तुम शांति की समाधि में बैठना, तुम एकांत में बैठना, ऐसे बाबा युक्ति बता। लेकिन कब तक, एक दिन उसने थप्पड़ मारा दीदी को और दीदी सिर, दीदी का जो है टेबल पे लगा और थोड़ा खून निकला, दीदी का चश्मा गिर गया। तो दीदी का थोड़ा उससे बात हुआ, फिर दीदी जब आई बाबा के पास, दीदी ने बताया तो देखो दीदी की क्या सोच थी। दीदी ने बाबा से बोला, बाबा को देखो बाबा कितना अच्छा हो गया, वो अगर मुझे थप्पड़ नहीं मारता तो मैं गिरती नहीं तो मेरा चश्मा नहीं टूटता, और चश्मा नहीं टूटता तो मैं बनवाने के लिए आपके पास नहीं आ पाती। देखो कितनी पॉजिटिव सोच है। अगर कोई और हो तो क्या सोचेगा, भगवान तो मदद करता ही नहीं है, बाबा मदद करता ही नहीं है। तो माना हमारी सोच जो है वो किस तरीके का, हम जिस चीज को चाहे जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं। हमारी बुद्धि तमोगुणी है तो हम तमोगुणी सोचेंगे, रजोगुणी है तो रजो ही सोचेंगे, सतो है तो फिर सतो सोचेंगे। अगर हमारी बुद्धि सतोगुणी है तो कितना भी निगेटिव सीन होगा हम उसे सतो सोच ही लेंगे। जैसे कोई बहुत डिप्रेशन वाली आत्मा है, बहुत निगेटिव सोचने वाली आत्मा है, उसको सतोगुणी भी बात बता दो, उसे मुरली की भी पॉइंट सुना दो तो भी वो निगेटिव कुछ ना कुछ उसमें से उठा ही लेगी। तो इसलिए दीदी कि ये चीज देखो कितना अच्छा दीदी ने इसको लिया। तो दीदी की कम पार्ट रहा लेकिन वो अपने ही पार्ट में अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, जिसमें बाबा कई बार कहते हैं कि अंतिम समय तक ना दीदी को सेवा याद आई, ना कोई साथी याद आया, नष्टो मोहा होकर के बाबा के पास बेहद सेवा में पहुंच गई। ठीक, ओम शांति।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीं ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।